प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है और क्यों है। जैसे हम जानते हैं कि संविधान जो है ये नियमों और कानूनों का लिखित समूह है ना। जितने भी नियम और कानून होते हैं उनको किसी एक किताब में लिख देते हैं तो उसे हम संविधान कहते हैं। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान ज़रूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। संविधान ये तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान निर्माण के नियमों और उपनियमों तथा उनकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान ज़रूरी है। तो चलिए आज हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई थी। तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खोला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों में से थे। यानी जो 292 प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश भारत के प्रांत में से लिए गए थे, वो 11 जो प्रांत थे उनमें से लिए गए थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लिए गए थे, जो दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो जो 4 हम प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते हैं, एक तो दिल्ली हो गया, अजमेर, मारवाड़, ठीक है, दूसरा कुर्ग, तीसरा को कुर्ग हो गया और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। तथा और 93 प्रतिनिधि, जो 93 प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। लगभग 10 लाख के ऊपर एक स्थान दिया गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। भारतीय संविधान सभा की वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई, 299 रह गई, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और हम जानते हैं ये बंटवारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। फिर हम देखते हैं संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के विधिवत उद्घाटन हम देखते हैं, दिन था सोमवार, 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, सुबह 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही संविधान की प्ररूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया एक दिन के लिए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्ररूप समिति का गठन किया गया। प्ररूप समिति के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया। इसमें भारत के भावी यानी भविष्य के संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी किया। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में हम अनुसूचियों की संख्या अब बढ़ के 8 से बढ़ के 12 हो गई है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और कुल बैठकें हुई थी 166। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा। तो हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत लागू किया गया। हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनकी पर चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानवाधिकारों को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियों से भी कुछ संविधान में हमने विशेष बातें ली। जैसे हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो हमने ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया, यानी जिस व्यक्ति को एक भी वोट एक्स्ट्रा मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तो वो विजयी माना जाएगा। तो सर्वाधिक मत वाले जो प्रणाली हमने ली है वो ब्रिटेन से ली है। सरकार का संसदीय रूप, जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वैसे भारत में संसद सर्वोच्च है, जो जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। कानून का शासन का विचार देखते हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका यानी कि संसद में अध्यक्ष पद यानी स्पीकर है ना, और उसके निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकारों की सूची, जो हमारे पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे और अब वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है हमारे, ठीक है। और न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति और न्याय की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। न्याय पुनराविलोकन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो कानून व्यवस्था बनाई गई है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे अवैध घोषित करेगा और है तो उसे वैध घोषित करके चलने देगा। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने देखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड में जैसे हमने देखा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो किसी क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं तो उनको रखते हैं। जैसे मान लीजिए फिल्म स्टार रेखा को हमने MP बनाया राज्यसभा का, या सचिन तेंदुलकर को खेल जगत में ख्याति अर्जित होने के कारण हमने राज्यसभा का MP बनाया था। तो 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जो देश आयरलैंड है उससे लिए। फ्रांस के संविधान से हमने महत्वपूर्ण स्रोत लिया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, समानता मतलब बराबरी और बंधुत्वता मतलब भाईचारा। कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप जिसमें केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली और संघात्मक व्यवस्था वाली है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में भी हमने कहाँ से लिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं बची हुई ताकतें, जो जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, संवर्ती सूची में नहीं है। उन विषयों को कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमने ली हैं कनाडा के संविधान से ली हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं,
1950 में कंप्यूटर से संबंधित हम देखते हैं कोई भी चीज़ नहीं थी, कंप्यूटर का कोई नाम निशान नहीं था, मगर आजकल साइबर क्राइम हो गए। तो अगर सरकार को साइबर क्राइम के बारे में कानून बनाना है तो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र ये किसी केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची किसी भी विषय में कंप्यूटर है ही नहीं। तो बची हुई जो ताकत है, जो बचे हुए विषय हैं, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके ऊपर है? केंद्र के पास है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कोई जो लोग व्यंगात्मक रूप में कहते हैं तो कहते हैं ये उधार का थैला है, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये संविधान जो है पुष्प गुच्छा है। पुष्प गुच्छा मतलब जैसे बुके, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते। तो जिन देशों से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं, जो देश विदेशों से हमने देखा है कि विदेशों में बड़े अच्छे अच्छे कानून हैं, उनको हमने अपने कानूनों में समाहित किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।